نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. آج الحمد للہ ہمارا تربیتی سیشن کا سکسٹھ سیشن ہے، اور یہ وقت پتہ ہے کون سا ہے؟ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں، اور ابھی فجر نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آخری تیسرے پہر میں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو عطا کروں؟ تو یہ وہ والا وقت چل رہا ہے، تو جلدی جلدی آپ نا دلی دل میں دعائیں بھی مانگتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ فائدہ ہوا نا ہمارے اس وقت میں اٹھنے کا، تو آج کل تو الحمدللہ یہ اتنا فائدہ ہے کہ یعنی آپ کی فجر کافی ذرا لیٹ ہوتی ہے جب سے ٹائم چینج ہوا ہے، تو آپ کوشش کر کے سبھی اس ٹائم پہ اٹھ سکتے ہیں، اور اٹھ کے اپنے وتر بھی پڑھ لیے، تہجد پڑھ لی. تو تہجد پڑھنے میں تو خیر آپ کو جتنی بھی مرضی نفل پڑھ لیں، آپ دو پڑھ لیں، چار پڑھ لیں، جتنی آپ کی توفیق ہو. اب اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھے آٹھ ہی پڑھنے پڑیں گے تو میں تو پڑھ نہیں سکتی، تو یہ نہ ہو کہ آپ چھوڑ دیں، کہ چاہے دو پڑھ لیں کوئی بات نہیں، سٹارٹ کریں اس سے نا. اور میں دیکھتی ہوں کہ کئی لوگ 5:30 پہ بھی آفس وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں سٹارٹ کی ہوتی ہیں. اور تو اگر لوگ دنیا کی آفیسز کے لیے، جابوں کے لیے اتنی صبح صبح اٹھ کے جا سکتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے اور اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے، اس سے دعائیں مانگ سکتے. اور اس وقت زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ابھی بچے اٹھے بھی نہیں ہوتے اسکول جانے کے لیے، تو ہم آرام سے اپنی جو بھی بات ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں نا. تو یہ اس ٹائم کا بہت فائدہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ کوئی آپ کو 3 بجے تو نہیں اٹھایا جا رہا نا، 5:30 تو بہت ہی نارمل ٹائم ہے، 5:45 اٹھ جائیں جیسے بھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا آج ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے، کیونکہ جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کافی دن سے تکبر کے بارے میں، تو تکبر کے اوپر ہم لوگ تھوڑی بات کریں گے، کیونکہ زیادہ تر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے. اور میں کہاں تکبر، کہاں، میں تو بہت عاجز مسکین بندی ہوں. تو یہ بعض دفعہ ہمارے منہ سے کہہ دینے کی بات ہوتی ہے کہ میں بڑی عاجز ہوں، میں بڑی مسکین ہوں، مگر تکبر اندر بھرا ہوتا ہے. تکبر کے اوپر میں کیوں بات کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر، اتنا سا بھی، یعنی ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، ذرے سے مراد ہے عربک میں ذرے اس کو کہتے ہیں کہ جو اسمالیسٹ پارٹیکل ہو. اب آپ کو اگر سائنس سامنے پڑھی ہوئی ہے تو اسمالیسٹ پارٹیکل ایٹم ہے، جو آپ اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن کسی چیز کا ہی نام لیا، ذرے کے برابر، اتنا تھوڑا سا بھی اگر تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب آپ یہ سوچ لیں، یعنی اتنی بری چیز ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ لقمان میں، لوگوں سے بیر خوئی اختیار نہ کرو، یہ جو لقمان علیہ السلام کی دعائیں، باتیں، نصیحتیں، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ تعالیٰ مغرور انسان کو پسند نہیں کرتا، تکبر والے کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ تم زمین پہ اکڑ کے چلو گے تو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے حکم دیا ہے کہ تواضع اختیار کرو، عاجزی کرو، اور کوئی کسی پہ فخر نہ کرے، اور نہ کوئی دوسرے پر زیادتی کرے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ حکم دے دیا گیا، तो फिर अब आप खुद ही सोच लें, इंसान जो तकब्बुर करके इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है, कयामत के दिन वो कैसे उठेगा? कैसे उठेगा ये पता है आपको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर और मुतकब्बिर लोग कयामत के दिन चींटियों की सूरत में इकट्ठे किए जाएंगे और उनको लोग अपने पैरों तले रौंदेंगे, जो लोग भाग रहे होंगे ना हशर के मैदान में, तो ये इंसान की फॉर्म में नहीं, चींटियों की फॉर्म में होंगे। लोग इनको अपने पैरों के नीचे रौंदेंगे क्योंकि वो अल्लाह की निगाह में जलील है। देखिए अब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या मैं तुम्हें जहन्नमियों की खबर ना दूं कि जहन्नम में जाने वाले कौन है? वो शख्स जो सख्त तबीयत हो, कुछ लोगों की तबीयत इतनी सख्त होती है कि लोग बात करते हुए भी डरते हैं कि भाई इससे तो बात की तो पता नहीं आगे से क्या कहेगा। स्पेशली कई लोग, बस अल्लाह माफ करे, हमारा दीन तो ये नहीं सिखाता, मुझे ये बात भी कहते हुए शर्म आती है कि जो दीन की तरफ भी सो कॉल्ड दीन वाले कह सकते हैं, इतने सख्त हो जाते हैं ना कि लोग उनसे भाग ही जाते हैं। हाय, ये तो बहुत सख्त है, ऐसा लगता है कि हर बार डंडा पकड़े हुए रहते हैं। तो नहीं, जो सख्त तबीयत हो, तकब्बुर करने वाला हो और अपने आप को बड़ा जानने वाला हो, ये है जहन्नमी। ये मुस्लिम की रिवायत है, यानी ऑथेंटिक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमियों की खबर बताई कि कौन कौन लोग जहन्नम में जाएंगे। और जहन्नम खुद कहती है कि मेरे अंदर सब मुतकब्बिर आएंगे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, एक बड़ाई जो है वो मेरी चादर है, अजमत मेरा तहबंद है, जो शख्स इनमें से भी किसी एक को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे आग में दाखिल करूंगा। ये बड़ाई जो है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला को जेब देती है, इंसान को नहीं देती। इंसान किस चीज पे बड़ा बनता है? क्या चीज है उसके पास जिसके ऊपर बड़ा बनता है? अगर इंसान ये सोच ले ना कि मेरे पास है क्या, मैं क्या चीज हूं, अपनी हकीकत को देख ले, कभी बड़ा नहीं बन सकता, कभी सोच ही नहीं सकता। हर चीज तो मेरी मांगे तांगे की है, किसे मांगा वह? हर चीज अल्लाह की इनायत है। अल्लाह ताला ना देता तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। सेहत से लेके, जिंदगी से लेके, हर सांस से लेके, औलाद से लेके, घर बार माल दौलत, जो चीज आप उठा लें, हुसन जमाल, आपके खानदान, हर चीज, ये चीजें हैं ना जिन पे लोग फखर करते हैं, ये सब चीजें तो अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई है। इसमें इंसान का क्या कमाल? अगर कोई मालदार भी है तो इसमें उसका क्या कमाल? ये तो अल्लाह ताला ने जितना तकदीर में लिख दिया उतना मिलना है। और दूसरे ये कि अगर वो ये समझता है कि मेरी काबिलियत है, तो ये काबिलियत किसने दी, ये अकल किसने दी? और बड़े बड़े अकल वाले यहाँ पे फकीर हैं, बड़े बड़े अकल वाले, बड़े बड़े पीएचडी बैठे होते हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया। तो तकब्बुर जो है ना, ये इतनी बुरी चीज है कि इससे बहुत सारी आगे बुराइयां इससे पैदा होती हैं। तकब्बुर है क्या चीज? तकब्बुर ये है कि इंसान अपने आप को, चाहे किसी क्वालिटी में, चाहे वैसे ही, अपने आप को दूसरों से ऊपर समझे। जब इंसान अपने आप को बड़ा देखना शुरू कर देता है ना, दूसरे से ऊपर, किसी सूरत में भी आप उसको हर चीज में रख सकते हैं, तो दूसरों को हकीर समझना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। देखो, जब मैं बड़ी अपने आप को समझूंगी तो सारे तो मुझे नीचे ही नजर आएंगे ना, तो वो फिर दूसरों की तरफ से, उनकी तरफ हकारत की नजर से देखता है, जहालत की वजह से या किसी, जो भी उसके जहन में है। और ये इतनी बुरी चीज है, यकीन करें, ये तकब्बुर ना, इसमें बड़े बड़े लोग, इवन आबिद, बड़े बड़े इबादत गुजार, बड़े बड़े उलमा, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये इतनी ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर ऐसे ग्रो कर जाती है, पता भी नहीं चलता। यानी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इंसान अपने आप को समझता है कि मैं मुतकब्बिर नहीं हूं, मगर हकीकत में वो तकब्बुर कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर तकब्बुर होता है। अब राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा तो जन्नत में नहीं जा सकता। तो हमें दुनिया में ढूंढना है, अरे कहीं मेरे दिल में जरा बराबर भी तो तकब्बुर नहीं है। और जैसे जैसे हम बात करेंगे, आप देखेंगे कि ये चीज कितनी ज्यादा जल्दी इंसान के अंदर आ जाती है और कितनी गैर महसूस तरीके से आती है। तकबर समझ लें कि जन्नत के आगे हिजाब है, आड़ है, ये जन्नत में नहीं जाने देगा। और तकबर करने वाला इंसान दूसरों के लिए वो पसंद करता ही नहीं है जो अपने लिए करता है, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सोचता है ना कि मैं सबसे बड़ी चीज हूं, ये तो सब मेरे से नीचे हैं। जब वो लोगों को देखता है तो उसको हमेशा लोगों में नेगेटिव चीजें नजर आती हैं। ये कुछ निशानी है ना ऐसे इंसान की, उसको नेगेटिव चीजें नजर आती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो खुद के अंदर हमेशा खूबियां ही देखता है और दूसरों के अंदर कमियां, दूसरों की हर चीज उसको जो कमी वाली चीज है, खराबी है, वो ही नजर आती है। कभी किसी की तारीफ, किसी की अच्छाई नजर नहीं आती है, अच्छाई सिर्फ अपनी नजर आती है। इसी वजह से वो लोगों को हकीर समझता है, क्योंकि उसको सबकी बुराइयां नजर आ रही हैं। अच्छा, एक तकब्बुर होता है इल्म का तकब्बुर, ये भी बहुत ही बदतरीन किस्म का तकब्बुर, कि इंसान अल्लाह ताला की इताअत से ही रुक जाता है कि भाई मेरी राय, मेरी बात बहुत बड़ी बात है और मैं ये मानूं, ये तो मेरे शायाने शान नहीं है। हक को कबूल नहीं करता, फरमाबरदारी नहीं इसमें आती। देखिए आज जो तक जो आप पढ़े हैं कुराने पाक में भी, तो लोग क्यों अपने अंबिया को कहते थे ये तो हमारे जैसे ही इंसान है, हम अपने जैसे इनके ऊपर हम ईमान ले आए। क्या चीज थी उनके अंदर? तकब्बुर था भरा हुआ। आदम अलैह सलाम के ऊपर किसने तकब्बुर किया था? इबलीस ने ना। क्या कहा था उसने? अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। तो फिर उसका अंजाम क्या हुआ? ये शैतान की सिफत है। और फिरौन ने भी तकब्बुर किया था, उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा आला रब हूं, ये उसने कहा था। कारून भी तकब्बुर करके निकलता था। तो आप देखें तकब्बुर करने वालों सबका, जितने तकब्बुर करने वाले आज तक आए, क्या वो भी अभी तक हैं? उनका अंजाम क्या हुआ? सिवाय जिल्लत और रुसवाई की और कुछ भी नहीं। दुनिया में भी जलील हुए, आखरत में तो जलील होंगे ही वो। अच्छा, अब तकब्बुर की किस तरह आप पहचानेंगे? कुछ मैं आपको अलामात बताती हूं कि अपने कामों से, अपनी बातों से किस तरह से पता चलेगा मेरे अंदर तकब्बुर तो नहीं आ गया। मसलन मजलिस में ऊंचे मकाम पे बैठना, सबसे ऊंचे होके बैठना, लोग सब नीचे बैठे में आप सबसे ऊपर बैठे, किसी काम के सिलसिले में तो बैठ सकते हैं, मगर वैसे अपने आप को समझना कि मैं वही बुलंद मुकाम के लायक हूं, मैं इनके बराबर क्यों बैठूं। इसी तरह लोगों से आगे बढ़ के चलना कि लोग मेरे पीछे पीछे चलें, बस लोगों को उनका हक ना देना, इन पे हर वक्त लोगों पे इतराजात करते रहना। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर बात लोगों को उनकी खामियां देख के पहचानना, खामियां उनके अंदर ढूंढना, ये बताता है कि इनडायरेक्टली आपके अंदर तकब्बुर है, वरना आपको अपनी खामियां हर बात नजर आती। अगर आपको अपनी खामियां हर वक्त नजर आती, दूसरे की खामियां तलाश करने का वक्त ही ना मिलता। हर वक्त ये आदत रखना कि दूसरे की नेगेटिव बात को हाईलाइट करना। फिर अपने आप को मुंह फुला के किसी से बात करना, लोगों को सलाम करने में पहल ना करना कि मैं क्यों सलाम करूं, मैं इन सबसे बड़ी हूं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि आप मोमिनों के आगे अपने बाजू झुकाए रखें। सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप सहाबा के सामने अपने बाजू झुकाए रखें, आजी करें यानी। और हमने अभी पिछले दिन ही पढ़ा था कि आप उनको सलाम किया करें। वान से भी तकब्बुर होता है, वो कैसे होता है? अपनी राय को सबसे बड़ा समझना, बड़े बड़े दावे करना, हर वक्त अपनी खूबियां बयान करना। ये तकब्बुर है। हर वक्त अपने आप को समझना कि मेरे अंदर खूबियां ही खूबियां हैं, ये तकब्बुरी की तो अलामत है। इसी तरह अपने हसब नसब को हर वक्त बयान करना, हर वक्त अपना खानदान बयान करते रहना, हम फलां खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह अपने इल्म पे, इसी तरह अपना तकवा, मैं अल्लाह से बड़े डरती हूँ। इसी तरह कोई अपने हुस्न जमाल और इन चीजों की हर वक्त तारीफ बयान करता रहे, ये भी तकब्बुर है। खूबसूरती का तकब्बुर अमूमन औरतों में होता है कि मैं बड़ी हसीन हूं और सबसे ज्यादा मैं अच्छी लग रही हूं। को आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, अच्छी अपना हाल हुलिया रखे, ये तकब्बुर नहीं है। अल्लाह ताला तो खुद खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। मगर ये इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, या जिस भी महफिल में मैं जा रही हूँ, जिस दावत में या जिस शादी में, अब मैं सबसे ज्यादा हसीन हूँ, सब मेरे से कम है। इसी तरह इंसान अपने आप को हर फन मौला समझे। हर बात मुझे आती है, मुझे हर चीज का इल्म है, जिसका इल्म ना भी उसमें भी टांगड़ा है। मुझे ये भी पता है कि जैसे कि मैं हर चीज की माहिर हूं, ये भी औरतों में बहुत ज्यादा चीज होती है। तकब्बुर जो होता है सिर्फ बातों से ही नहीं, इंसान के एक्शन से भी पता चलता है कि उसकी आवाज से, उसके लहजे से, उसके गुफ्तगू करने के अंदाज से, कैसे बोलता है, उसकी चाल ढाल से, उसके नाज नखरे से, उसके उठने बैठने से, उसकी हरकतों से, इन सब से तकब्बुर का भी पता चलता है। ये कह देना फलां की क्या मिजाल है, मुझे ये कहे, मुझे ये क्या चीज है, आप क्या चीज है, आप क्या चीज है कि इंसान कहता है मुझे ये कहे, यही तो तकब्बुर है। यानी आप दिल में खुद को बड़ी चीज समझते थे। देखिए, शैतान का तकब्बुर जो था ना, ऐसे नहीं तो वो एक दिन में ही मुतकब्बिर हो गया, नहीं, वो तकब्बुर का बीज अंदर था, छुपा हुआ था। लेकिन अब वो जिस दिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अब ये झुक जाओ इसके सामने, ये उसका टेस्ट था। उस दिन वो जो अंदर छुपा हुआ तकब्बुर था ना, वो बाहर आ गया और जुबान पे भी आ गया कि मैं तो इससे बेहतर हूं। तो आप देखेंगे कि कभी इस तरह के हालात जब आते हैं ना, जब इंसान के खिलाफ, राय के खिलाफ, या उसकी जात के खिलाफ, या आप समझ लें कि उसके जो भी उसका हसब नसब है, या जो उसकी कोई कमाल है, अपने आप को किसी चीज में बहुत बड़ा समझता है, उसके खिलाफ कोई बात हो तो फिर उसका रिएक्शन देखें। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो फिर देखें क्या वो बोलता है, तब अंदर का वो तकब्बुर ना बाहर निकल आता है। फिर वक्त यही समझे कि मेरे जैसा कोई है तो सामने आए, मुझसा है कोई तो सामने आए, कोई मेरे जैसा है ही नहीं, मैं ही सबसे बेस्ट हूं। ये तकब्बुर की अलामत है, हर चीज में यानी खुदस्त समझना। इसी तरह ये एक्सपेक्ट करना कि लोग, जब मैं जाऊं किसी मजलिस में तो लोग मेरे लिए खड़े हो जाएं, खड़े होके मुझे सलाम किया करें, और मैं तो किसी के लिए खड़ी ना हूं, मैं तो बैठी ही रहूं, लोग जब आए तो मुझे आके सलाम करें। इस चीज को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया। सहाबा को मना करते थे कि मेरे लिए खड़े ना हुआ करो। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते थे कि जब मैं दाखिल हूं तो मेरे लिए खड़े ना हुआ करो, तो अब हमें ये एक्सपेक्ट करना कि मैं आई हूं और मेरे लिए सारे खड़े हो जाएं, ये तो सही नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरह मुतकब्बिर इंसान जो होता है वो अकेला नहीं चलता, वो चाहता है मेरे साथ एक फौज इकट्ठी हुई हो, मेरे पीछे पीछे लोग चले। तकब्बुर की वजह से वो किसी से मुलाकात नहीं करने के लिए जाता, लोग ही आए मुझसे मिलने के लिए, मैं क्यों किसी के घर जाऊं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था, जैसे मैंने सीरत की उसमें भी बताया था कि कोई, जैसे हजरत अनस फरमाते हैं, कोई मदीने की एक लौंडी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के, आपको मैंने वो नौकरानी का किस्सा बताया था ना कि वो रो रही थी बूढ़ी औरत बैठ के, तो कोई लौंडी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के अपने काम के लिए ले जाती थी कि मेरा ये काम है। और ये नहीं फरमाते थे कि मैं तो नबी हूं और मेरे पास कहाँ टाइम है तुम्हारे लिए। और मुतकब्बिर की एक ये भी पहचान होती है कि वो अपने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाता, कि मैं इतनी बड़ी चीज हो कि मैं कोई काम करूं, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बिल्कुल इससे खिलाफ था, इसके उलट था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यह हाल है कि एक दफा नमाज पढ़ा रहे थे तो नमाज में भूल गए, 4 की जगह 5 रकात पढ़ा दी। उसके बाद सहाबा कराम ने जब सलाम फेरा तो उन्होंने बताया कि क्या नमाज का कोई मतलब रकत बदल गई है, ज्यादा हो गई है, आपने आज इतनी रकात पढ़ाई। तो आपने फरमाया मुझे बता दिया करो, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, मैं भी भूल जाता हूं। ये नहीं कहा तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, भला तुम मुझे बताओगे। सुभान अल्लाह, ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत थी, इतनी आजी थी। तो अगर आप सीरत को सामने रखे ना तो उसमें आजी है। हजरत उमर देखे एक दफा भागे जा रहे थे, किसी ने देखा भाग रहे, तो उसने पूछा क्या हुआ, कहते हैं बैतुल माल का एक ऊंट है वो कहीं निकल गया, मैं उसको ढूंढने के लिए भाग रहा हूं। कहते हैं आप किसी गुलाम को कह देते, आपको पता वो इतने बड़े खलीफा थे, उनकी एम्पायर उस वक्त इस्लामिक एम्पायर इतनी फैल चुकी थी, बहुत बड़ी चीज थे, खलीफा उस वक्त एक ही हुआ करता था, उसका हुक्म सारी तरफ चलता था। तो उसने कहा आप किसी गुलाम को दौड़ा देते, आपको खुद भागने की क्या जरूरत थी। क्या जवाब देते हैं, उमर से बड़ा कौन गुलाम है, मैं गुलाम ही तो हूं, मुझसे बड़ा कौन गुलाम है। तो जैसे मैंने आपको एक दफा कहा था कि अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहना है कि मैं अल्लाह की गुलाम हूं, जब इंसान के अंदर ये बात आ जाए ना कि मैं गुलाम हूं, किसी का भी गुलाम हो उसकी वो तो हैसियत नहीं होती ना जो मालिक की होती है। ये बड़ाई जो है ये अल्लाह ताला को सिर्फ जेब देती है। किसी चीज का भी अगर बड़ाई का एहसास इंसान के अंदर आ जाए तो अल्लाह के हाँ वो जलील है, ऊंचा नहीं है। अगर हम समझते हैं कि अपने आप को ऊंचा करने से हम ऊंचे हो जाते हैं तो ऐसी बात नहीं है, अल्लाह के नजदीक नीचे हो जाते हैं। तो ये इतनी बुरी बीमारी है ना तकब्बुर की, कि इसका फौरन इलाज कराना चाहिए, बल्कि खुद करना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने आप को खुद सबसे ज्यादा पहचानता है ना, कोई और क्या हमारे इलाज करेगा। और अल्लाह पहचानता है हमें या हम अपने आप को खुद पहचानते हैं सबसे ज्यादा। जब इंसान अपनी हकीकत देखेगा ना, यानी कैसे अब आपने इलाज करना है, कि नंबर वन ये अपनी हकीकत देखें, अपनी हकीकत देखेंगे तो सारा तकब्बुर उड़ जाएगा। पहले देखें कि मैं किस चीज से बनी हूं, क्या चीज हूं मैं, कैसे पैदा हुई, क्या थी मैं, ना सुनता थी ना देखती थी ना कुछ महसूस कर सकती थी ना हरकत कर सकती थी, क्या चीज थी मैं। पहले तो मैं मुर्दा थी, और ये जो ताकत मेरे पास आई है उससे पहले क्या थी, कितनी कमजोर थी, ये जो दौलत आई है इससे पहले क्या थी, खाली हाथ थी। फिर इंसान ये देखे कि मैं किस वजह से तकब्बुर कर रही हूं, क्या चीज है, क्या सोच के तकब्बुर कर रही हूं। जो भी जिस चीज का भी तकब्बुर है उसके बारे में सोचें कौन सी चीज मुझे, चाहे मसलन इल्म का है कि अब मैंने बड़ा पढ़ लिया, तो अगर इल्म का तकब्बुर है तो इंसान ये सोचे कि देखो ये अल्लाह ताला के सामने हुज्जत होगा, जाहिल की निस्बत मेरे से ज्यादा सवाल होगा, मैं तो ज्यादा खतरे में हूं, मुझे तो ज्यादा अमल करना है, मुझे किस बात का तकब्बुर, मेरी पूछ ज्यादा सख्त होगी। अगर किसी को दौलत की वजह से तकब्बुर है तो ये जान ले कि जो यहूदी है ना सबसे ज्यादा मालदार है, लेकिन लानत पड़ी भी इन पे, और मेरा माल एक मिनट में कोई चोर ले जाए तो उसके बाद मैं क्या हूं, या नुकसान हो जाए, आज बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई, लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ, तो अल्लाह चाहे तो मैं तो एक लम्हे में फकीर हो सकती हूं। माल से तो कोई भी तकब्बुर नहीं कर सकता। फिर अगर आपको कोई अपनी जिस्मानी ताकत पे तकब्बुर है कि मैं बड़ी स्ट्रांग हूं, तो ये याद रखें कि एक दिन इंसान उठता है और जरा सा उसको बुखार हुआ होता है ना, फिर देखें कहाँ गई वो जिस्मानी ताकत। और आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां कि अंदर ही अंदर इंसान को बीमारियां लगी होती हैं, पता ही नहीं होता कौन सी बीमारी अंदर ही अंदर खा रही है, किस चीज पे तकब्बुर है। एक दिन का बुखार इंसान को कैसे बिस्तर पे लगा देता है, और वही इंसान जो कल तक ऐसे अकड़ रहा था कैसे हो जाता है, एक पाँव में कांटा चुभ जाए तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता, किस चीज का तकब्बुर। तो जिसको खूबसूरती का तकब्बुर हो वो ये सोचे कि मेरा इसमें क्या कमाल है, और मुझे अपने अंदर को देखना चाहिए, वहां पे आखिरत में मेरी शक्ल देख के हिसाब किताब नहीं होना, पता नहीं मैं अल्लाह की नजर में भी खूबसूरत हूं या नहीं हूं, मुझे ये देखना है, अल्लाह मुझे अंदर से खूबसूरत बना देना, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ तो अंदर की खूबसूरती चाहिए ना, बाहर की तो नहीं चाहिए। इसी तरह किसी को अपने खानदान पे अगर तकब्बुर है तो फिर उसको ये देखना चाहिए कि मेरे आबाओ अजदाद की असलियत क्या थी, वो किस तरह पैदा हुए, वो भी तो गंदे पानी की एक बूंद ही थे, और मेरा क्या कमाल है जो उनके घर पैदा हो गई, किसी फकीर के घर भी पैदा हो सकती थी, तो मुझे किस बात का तकब्बुर। तो तकब्बुर का इलाज करें अल्लाह के बंदों के आगे ना आजी करें, अकड़े नहीं उनके सामने। अगर इंसान को अपनी असलियत पता चल जाए ना, कभी भी तकब्बुर नहीं कर सकता। सोचें जरा, अगर उसको अपना अंजाम भी याद रहे ना, शुरू से देख ले मैं एक बिल्कुल बेजान चीज थी, मिट्टी थी, फिर अल्लाह ताला ने मुझे कैसे जिंदा किया, फिर इसी जोंगी मेरी हड्डियां गल सड़ जाएंगी और बिल्कुल पाउडर हो जाएंगी, कीड़े मेरे जिस्म को खा जाएंगे, और फिर मैं जब बिल्कुल मिट्टी हो जाऊंगी, कोई लोग उसे प्याले बनाएंगे, कोई मकानों की ईंटें बनाएंगे, ये मेरा अंजाम होगा, और कयामत के दिन मैं अल्लाह के सामने हाजिर होंगी, फिर वो देखेगा मुझे ये मैं क्या लेकर आई हूं, और फिर अल्लाह ताला मेरे से सवाल करेगा हर हर नेमत का जिस पे मैं अकड़ती थी, और हर हर मेरे अमल का, और हर मेरी चीज जो मैं बोलती थी एक किताब में लिखी हुई होगी, गिन गिन के अल्लाह ताला ने लिखा होगा, इसका हिसाब किताब देना है मुझे, मुझे इसके लिए तैयारी करनी है। जिसका ये हाल हो उसका तकब्बुर क्या माने रखता है। फिर अगर मैं जहन्नुम में चली गई तो मेरे से तो जानवर ही ज्यादा अच्छे, क्योंकि वो मट्टी तो हो जाएंगे ना, मैं तो मट्टी भी नहीं हो सकूंगी उस दिन। अब देखिए जब इंसान की ये सोच हो जाती है ना, तो तकब्बुर खुद ब खुद निकल जाएगा। इंसान का, मोमिन का तो अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया ना, मोमिन के लिए तो ये जिंदगी ना जैसे कैद खाना है। अब उसकी समझ ले मिसाल मोमिन की ऐसे कि एक कैद के अंदर पड़ा हुआ, जेल के अंदर पड़ा हुआ कैदी है, ये दुनिया उसके लिए कैद खाना है, रिस्ट्रिक्टेड है उसकी लाइफ। जो कैद में होता है क्या वो तकब्बुर कर सकता है, कभी किसी कैदी को देखा तो बहुत अकड़ के बैठा हो। तो इंसान भी ना एक कैदी है जो वैसे भी इंसान है, कैदी, हर इंसान से गुनाह होते हैं, और उसकी सजा हो सकता है अल्लाह ताला माफ करते, हो सकता है अल्लाह ताला क्यामत के दिन सजा दे। तो जो अपनी सजा के लिए इंतजार कर रहा है, अभी इस दुनिया में है, उसके मामले का पता ही नहीं है उसके साथ आगे क्या होना है, वो क्या तकब्बुर करेगा बताएं? उस जिसको पता ही नहीं है मैंने जहन्नुम का ईंधन बनना है या वहां पे मुझे कोई सजा मिलनी है, वो कैसे तकब्बुर कर सकता है? आप ये देखिए सजाए मौत के जो कैदी होते हैं यहाँ पे, क्या वो कभी आपने फखर करते हुए देखे, तकब्बुर करते हुए देखे? ये सोचे पता नहीं मेरा अंजाम क्या होना है, वहां पे कोई कबूलियत भी है या नहीं मेरी, किस बात पे मैं तकब्बुर करूं? तकब्बुर करना सिर्फ अल्लाह ताला के लायक है, और अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए क्या चाहते हैं? आजी, तवाजो। हमें नेकियों का भी तकब्बुर हो जाता है, ये भी याद रखें, ये भी बहुत ही बुरा तकब्बुर है कि इंसान ये सोचने लगता है कि मैं तो बड़ी नेक हो गई हूं, बहुत अब मैंने काफी अच्छे काम कर लिए हैं, और अपनी बुराइयां नजर नहीं आती। मैं तो ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, और फलां तो ये भी नहीं करता। ये कैसा जुमला है? ये जुमला बता रहा है कि तकब्बुर छुपा हुआ है आपके अंदर। चेक इट, अगर आपके मुंह से बार बार ये निकल रहा है, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ, फलां फलां, वो तो देखा, वो तो ऐसे भी नहीं करता, कम अज कम मैं उससे तो अच्छी हूं ना, ये तकब्बुर ही तो है। अस्तग़फिरुल्लाह। तो तकब्बुर छुप के अंदर बैठा होता है। इसी तरह अपने साथियों के अंदर, अपने जैसे लोगों के अंदर इंसान अपने आप को बड़ा करके बताए, ये भी अच्छी चीज नहीं है, ये भी तकब्बुर की एक अलामत है। अपने आप को बड़ी जगह पे बिठाए या अपने आप को बड़ा समझे उनसे कि मैं इनसे ऊपर हूं, चाहे किसी वजह से भी। तो इसका इलाज करना जरूरी है, अगर इसका इलाज नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा भयानक अंजाम हो सकता है। हजरत मुतरफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अगर मैं सारी रात सो के गुजारूं और शर्मिंदगी की हालत में सुबह करूं तो ये मुझे ज्यादा पसंद है उस हालत से कि मैं सारी रात कयाम में गुजारूं और सुबह गरूर की हालत में उठूं कि मैं तो सारी रात कयाम में गुजारी, सारी रात में इबादत करती रही। तो इबादत का भी इंसान को तकब्बुर हो जाता है। ये शैतान है ना, कहता है इसे तकब्बुर करा दूंगा फिर तो जाएगा ही नहीं जन्नत में, फिर तो जहन्नम में ही इसका ठिकाना होगा। जहन्नम खुद कहती है मेरे अंदर सारे मुतकब्बिरीन ने आना है। तो अपने आमाल की खुद सुपरविजन करें, निगरानी करें। अगर हर बार चाहते हैं कि लोग बाअदब मेरे सामने खड़े रहें, मेरी ऐसी इज्जत करें, ऐसी ताजीम करें, मैं इस लायक हूं कि मेरी ऐसी ताजीम किया जाए, लोग मेरे सामने हाथ बांधे हुए खड़े हों लाइनों में, ये सब तकब्बुर की अलामत हैं। और मुतकब्बिर शख्स कभी कभी दुआ भी नहीं करता, ऐसा भी होता है कि वो दुआ नहीं करता कि दुआ क्यों करूं मैं, दुआ करना मेरी शायाने शान नहीं है, दुआ भी नहीं करता। याद रखें जब भी इबादत का तकब्बुर आने लगे ना, तो अपने अंदर सोच लिया करें कि इस अमल की तौफीक मुझे किसने दी है, ये तो अल्लाह ताला का एहसान है कि मैं ये कर पाई हूं, वरना मैं कहां से कर पाती, मेरे अंदर कहां ये ताकत। तो इंसान का अमल करना भी ना हमारी अपनी ताकत से नहीं है, ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है। और अगर अपने आप को बहुत इज्जत वाला समझते हैं तो ये याद रखें, अल्लाह ताला के सामने इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला है। बस ना मालदार इज्जत वाला है, ना वो मालदार हो भी सकता है जो अल्लाह से डरने वाला हो, लेकिन जो अल्लाह से नहीं डरता, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे वो कोई भी उसके अंदर अपने अंदर समझता हो कि मेरे अंदर ये खूबी है, कोई चीज भी अल्लाह ताला को उसको बड़ा नहीं बनाती, कोई चीज भी। آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دعا کرتے ہیں، ان کا دنیاوی سٹیٹس کچھ نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، وہ قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے، حالانکہ دنیاوی طور پہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہ عاجز ہیں بندے. اور جو انسان اپنے آپ کو خود بڑی چیز سمجھے کہ میرے آگے لوگ آگے پیچھے چلتے ہیں تو پتہ نہیں میں وہاں پہ بھی جا کے ایسے ہی ہوں گی، اس جتھے کی جیسے ہم نے ابھی بات پڑھی تھی، اتنی جماعت کی جو گروپ یا آپ کے فینز یا آپ کے چاہنے والے یا آپ کے جو بھی اور کوئی سپورٹر، ان کی سے انسان تو متاثر ہو سکتے ہیں کہ ہمیں بھائی ان کے ساتھ اتنی بڑی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں فرق پڑتا. تو جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جیسے جو حدیث میں جیسے ہے کہ کوئی غریب بھی آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی نکاح کا پیغام بھیجتا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتا، کہیں سفارش کرتا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں. اور کوئی مالدار ہوتا ہے، بڑا باعزت ہوتا ہے لوگوں میں، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تکبر ہے نا. تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے، جب کبھی خیال آنے لگے، کسی چیز پہ بھی خیال آنے لگے، کیونکہ شیطان ڈالتا ہے خیال، تم تو بڑی وہ ہو گئی ہو، تم نے تو یہ کر لیا ہے، تمہیں تو اب یہ آ گیا ہے، فوراً اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا سوچیں، یہ میں کیا چیز ہوں، اپنے آپ کو خود جواب دیں، فوراً خود جواب دیں. اچھا، توازو کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ عاجزی، جھک جانا. اور اسی سے انسان بندہ بنتا ہے، عبد بنتا ہے. عبد ہوتا ہے نا جو غلام ہے، اسی سے غلامی آتی ہے، جھکنے سے. تکبر اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہو جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کئی لوگ دعا ہی نہیں کرتے، یا کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ گیا ہم اس سے زیادہ سمجھتے ہیں، بات ہمیں زیادہ پتہ ہے کیسے دنیا چلانی ہے، کیا کرنا ہے، یہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، تو وہ اللہ کے سامنے بھی تکبر کرنے لگتے ہیں. تکبر صرف بندوں کے سامنے ہی نہیں ہوتا، جب انسان اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ سامنے بڑی چیز سمجھے تو وہ اللہ کے سامنے تکبر ہے. تو تواضع کی نشانی کیا ہوتی ہے اگر دیکھنا ہے یا اپنے اندر یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ نمبر ون، یہ لوگوں سے آگے چلنے کی کوشش نہ کریں، کسی ضرورت کہتا ہے تو چل سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ اس وجہ سے میں اکڑ کے آگے چلوں، میں سب کی لیڈر ہوں، میں سب سے آگے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہوتی تھی نا پیچھے ہوا کرتی تھی، لوگوں کو آگے کرتے تھے، خود پیچھے چل رہے ہوتے تھے، سواری پیچھے ہوا کرتی تھی. پھر اسی طرح جو کوئی زیادتی کرے اس کے ساتھ خوشی سے ملے، کسی کو حقیر نہ جانے، دوسروں کی دعوت قبول کریں، کوئی آپ سے زیادتی بھی کرے تو اس کا بھی کام کر دیں، کوئی آپ سے مرتبے میں کام ہو، چاہے وہ علم میں کم ہے، چاہے وہ مال میں، دنیاوی اعتبار سے کوئی آپ سے سٹیٹس میں کم ہے، اس کے کام میں بھی ہاتھ بٹا دیا کریں، اس سے بھی تکبر ٹوٹتا ہے. پتہ ہے کوئی مسکین ہے، محتاج ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے، اس کے ساتھ کھانا کھانے سے، اس سے بھی تکبر ٹوٹتا ہے. تو ان چیزوں سے توازو آئے گی. ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے خلیفہ جو گزرے، خلفائے راشدین، کتنی عاجزی ہوا کرتی تھی ان کے اندر. تو ہم نے عاجز بننا ہے. جب آپ کی گفتگو میں سختی آ جاتی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. तो ये लोग तो वैसे ही सख्त मिजाज होते हैं, वो नहीं जो बनावटी सख्ती करके दिखा रहे होते हैं। वैसे भी सख्ती अच्छी चीज नहीं है, उस तरह से भी सख्त मिजाज होना अच्छी चीज नहीं है, मगर कुछ लोग बनावटी सख्ती दिखाते हैं अपने आप को बड़ी चीज शो करने के लिए कि तुम मेरे सामने बोलोगे। तो याद रखिए, इसी से आप खुद का इलाज करें। जिस चीज में भी आपको तकब्बुर फील होता है ना कि यहां पे मैं तकब्बुर कर रही हूँ, वहां पे फौरन उसके, जैसे मैंने भी आपको कितनी सारी बातें बताई कि अगर इल्म का तकब्बुर है, पैसों का तकब्बुर है, किसी चीज का भी, खूबसूरती का तकब्बुर है, अपनी जवानी पे तकब्बुर है, जिस चीज पे भी तकब्बुर है उसको निगेट करने के लिए उसके खिलाफ जो भी बात जाती है वो अपने अंदर सोचे, उसका तोड़ खुद करें और अपने आप को आसमान से जमीन पे लेकर आए इंशाअल्लाह ताला। तो इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है इस महीने में, और हर एक ने करनी है, कहीं पे भी हमारी से ये कोताही ना हो। इस चीज को हमने दुनिया में ही अपने दिल से निकालना, ये ना हो कि आखिरत में जाके चूंटियों की सूरत में उठाए जाए। अच्छा जी, इंशाअल्लाह ताला आपकी कुरान पाक की तिलावत में वही 2 रकू की आपके रोजाना की, यानी असाइनमेंट कह लें या आपका टारगेट होना चाहिए। अगर सुबह में पढ़ें तो बेस्ट है, वरना अगर सुबह किसी वजह से आप नहीं पढ़ सकते तो दिन में किसी भी वक्त तिलावत कर लें। क्योंकि हदीस में आता है जिसने रात को 100 आयात पढ़ी उसके लिए सारी रात के कयाम का सवाब लिखा जाता है, रात सोने से पहले। अगर 100 आयतें, अगर जुबानी याद है जुबानी पढ़ लें कोई सूरत जिसमें 100 आयात हो, या देख के पढ़ लें। तो अगर आप चाहते हैं ना पूरी रात के कयाम का आपको सवाब मिले, पूरी रात जागने का और जाके टीवी देखने का नहीं, नमाज पढ़ने का, इबादत करने का सवाब अगर आप चाहते हैं, तो सोने से पहले 100 आयात पढ़ लिया करें। आपने फरमाया जिसने 100 आयात पढ़ने का एहतमाम किया रोजाना, तो उसे अल्लाह ताला के यहाँ फरमा बरदारों में लिख लिया जाता है इंशाअल्लाह ताला। हम भी ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने फरमा बरदार बंदों में शामिल फरमा ले। फिर जिक्र में ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफा का आपका जिक्र है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मूसा अशरी से फरमाया था कि मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना ना बताऊं, तो उन्होंने फरमाया ए अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, जरूर बताएं। तो आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये पढ़ा करो, ये जन्नत के खजानों में से है। तो आप जब ये पढ़ लेंगे तो आपने जन्नत का एक खजाना पा लिया, ट्रेजर। ट्रेजर के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, कई लोग तो सारी जिंदगी ट्रेजर के लिए भागते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, आपको ये जन्नत का ट्रेजर मिल गया। और ये तो जिक्र ऐसी चीज है, कुछ ना कुछ जिक्र जरूर अपनी जुबान पे रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये याद रखो कि ये पूरी दुनिया जो है ना मलऊन है, यानी लानत भेजी हुई है, इसके ऊपर लानत की गई है, और दुनिया का सारा साजो सामान जो कुछ इस दुनिया में वो भी मलऊन है। अगर कोई चीज इससे मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना का मतलब क्या, यानी एक्सेप्टेड, एक्सेप्शनल केस समझ लें जैसे, तो वो क्या है, अल्लाह का जिक्र। और वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता हो और जो आलिम है, जो इल्म सिखाए और जो मुतअल्लिम है, यानी जो इल्म सीखने वाला है, ये सिर्फ एक्सेप्शनल है, बाकी सारी दुनिया लानत जदा है। तो जिक्र को जरूर जुबान पे जारी रखना है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, दुआओं में ये है कि जैसे हमने इस दफा पढ़ा भी है जहन्नुम के अजाब के बारे में, तो आप अपनी दुआओं में शामिल करेंगे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह ताला मुझे आग के अजाब से बचाना। और हदीस में आता है जो इंसान अल्लाह ताला से 3 दफा जन्नत का सवाल करे तो जन्नत कहती है ए अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे, और जो इंसान تین دفعہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے. تو تین دفعہ صبح، تین دفعہ شام، کئی جگہ سات دفعہ بھی آتا ہے، سات دفعہ بھی کہہ لیں تو دیکھیں یہ تو اتنی چھوٹی سی دعا ہے، آپ کو ابھی یاد بھی ہو جائے گی. اللہم، اللہم تو ہم ہر ایک دعا سے پہلے کہتے ہیں. اجرنی یہ صرف آپ کو یاد رکھنا، اور النار آپ کو، یہ نار عربک کا ورڈ ہے جو سب کو آتا ہی ہے آلریڈی، عذاب النار. تو یہ بہت مختصر سی دعا ہے، اگر آپ کو لمبی چوڑی دعائیں نہیں بھی آتی تو یہ چھوٹی سی دعا ضرور یاد کر لیں. اللہم اجرنی من النار، اگر زیادہ لوگوں کے لیے کہنا ہے تو اللہم اجرنا من النار، ہم سب کو ہی اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لے. تو میرے منہ سے اجرنی نکلتا ہی نہیں ہے، جب اجرنی کہنے لگتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ میرے بچوں کو بھی تو بچا لے، اللہ میرے پیرنٹس کو بھی تو بچا لے، اللہ میرے شوہر کو بھی تو بچا لے. تو ضروری نہیں اجرنی آپ کا، اجرنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور نیت کر لیں کہ سب کی طرف سے. ٹھیک ہے، ایک اور قرآن پاک کی دعا ہے، سورہ فرقان کی 65-66 آیت ہے. ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے اللہ، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم کو بچا لے جہنم کے عذاب سے. ان عذابها كان غراما، بے شک اس کا عذاب جو ہے وہ جان کا لاگو ہے. انہا ساءت مستقرم و مقامہ، وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بڑا ہی برا مقام ہے، بڑی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو یہ دونوں ہی دعائیں بہت اچھی دعائیں ہیں آپ کو یاد رکھنے کے لیے اس دفعہ کے لیے. اگر آپ کو یہ دوسری دعا آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو یہ دعا تو آپ نے ضرور مانگنی ہے، صبح شام اس کو مانگے، ایک دوائی کی طرح سمجھے کہ آپ نے یہ لینی ہی لینی، کہ وہاں کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں یہاں پہ خوب دعائیں مانگنی ہیں. ان لوگوں کا حال تو ہم نے پڑھ ہی لیا، تو اب اس کے بعد اپنے لیے بچانے کا انتظام بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل ایمان کو. کہا یا ایھا الذین آمنو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 65-66 ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر اگر ذرا سا بھی، ذرا برابر بھی تکبر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ نرمی سے نکالنا، اس میں ہمارے پر سختی نہ کرنا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سے بعض چیزیں چھین لے سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے، اور پھر بھی تو ہم عاجزی کریں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نرمی سے ہمارے اندر سے یہ چیز نکال دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلا دے، ہمارے اندر کہیں پہ بھی تکبر ہے تو ہمیں یہ احساس دلا دے کہ یہاں پہ ہماری یہ برائی ہے، تاکہ ہم اس کو دور کر سکیں. اے اللہ پاک، تو ہماری اس میں مدد فرمانا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پر چلا دینا، ہمیں اپنی عاجز بندیوں میں شامل فرما لینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.